اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے دیکھیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے جو بعد میں پھر دوسرے حالات میں بھی اس کی تطبیق ہوتی ہے. دیکھتے ہیں آیت نمبر 84 سے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہ کریں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں. یعنی یہ اب منافقین کی رسوائی کا مزید سامان تیار کیا جا رہا ہے. کہ اب تک تو ان پر منافقت کے پردے پڑے ہوئے تھے، مگر اب پچھلی آیات جو نازل ہوئیں اس سے پتہ چلا کہ منافقین سے قطع تعلق کر لیجئے. بالکل دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہے. اب کسی بھی گروہ میں جب لوگ مل جل کے رہتے ہیں نا، تو ان کے دکھ سکھ ہوتے ہیں. دل بھی چاہتا ہے کہ ہر خوشی غم ایک انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان امید بھی لگا لیتا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد یہی لوگ ہیں جو میرا ذکر خیر کریں گے. کسی انسان کا اپنے ساتھ رہنے والے گروہ اور لوگوں سے جو آخری تعلق یا آخری ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کی نماز جنازہ کی ہوتی ہے. شاید آپ نے شعور سے یہ جملے سنے کہ نہیں سنے، تو پھر سن لیجیے. انسان اپنی زندگی میں جن کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، جس گروہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ان سے حقیقی رشتہ داری محسوس ہونے لگتی ہے. زندہ رہتے ہوئے ان کی تقریبات میں جاتا ہے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، ان کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، خوشیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اچھا لگتا ہے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بیٹھنا. تو ایسا انسان یقیناً یہ امید لگاتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے دوست، میرے ساتھی، جو میرے ساتھ کام کرنے والے ہیں، انہی کے ہاتھوں میری تکفین ہو، انہی کے ہاتھوں میری تدفین ہو، اور انہی کے ہاتھوں میری لاش قبر میں اترے. پچھلی آیات میں چونکہ منافقین سے زندگی بھر کے تمام رشتے کاٹ دیے گئے، تو اب یہاں آخری رشتہ یعنی دعائے استغفار بھی کاٹا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرم دل طبیعت تھی آپ کی، آپ لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے تھے. آپ کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ میرا کوئی بھی طرز عمل ان کو نیکیوں کی طرف لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب حکم اتار دیا اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتا دی کہ انہم کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا، ورسولی ہی اور اس کے رسول کا، وماتوا، اور اسی حال میں مر گئے، یعنی ان کا انجام بڑا برا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے کفر کی حالت میں. تو لہٰذا آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. وہم فاسقون، اور وہ فاسق ہیں. اس ایک آیت سے کیا بات پتہ چل گئی؟ کہ نبی کا کسی کی نماز جنازہ پڑھانا یہ ایک آنر ہے، یہ ایک عزت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، ایک تو امید ہے کہ اس کی بخشش ہوگی، دوسرا اس معاشرے میں ایک عزت ہوگی کہ اچھا، اس کا نماز جنازہ تو بہت بڑے شخص نے پڑھایا تو اللہ نے منع کیا. اس کے ساتھ واقعہ آتا ہے، ہمیشہ ہی آپ لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا غزوہ تبوک سے واپسی پر اس کا انتقال ہوا. ذرا سا سوچئے، بدر پہلی جنگ تھی، اس وقت یہ مسلمان ہوتا ہے اور تبوک سے بعد مرتا ہے. ٹوٹل 9 سال کا اس کا اسلام کی زندگی کا سفر تھا. کیا یہ 9 سال اس کو بنا سکتے تھے؟ لیکن یہ کیا بنا؟ نبی کا ساتھ دے کر یہ سابقون الاولون میں بھی شامل ہو سکتا تھا، لیکن نصیب کی بات دیکھیے، جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے، جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، مخلص صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ آپ میرے باپ کیا کفن دفن کیجئے اور اپنا کرتا ہی دے دیجئے تاکہ ہم اس کو کفن کے طور پر شامل کریں. ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے باپ پہ رحم کریں. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، باوجود اس کے کہ اس شخص نے ذاتی طور پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بہت دفعہ تکلیف دی، لیکن آپ نے وعدہ کر لیا. جب آپ قبرستان پہنچے تو حضرت عمر نے وہاں جا کر آپ سے التجا کی کہ آپ اس شخص کا نماز جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ گزشتہ کئی سالوں سے اسلام اور مسلمانوں کو اس نے بہت نقصان پہنچایا، اس کا نفاق تو کھلا پڑا تھا، اور بات یہ کہ اللہ نے آپ کو استغفار کرنے سے بھی روکا ہے، پچھلی آیتوں کی طرف اشارہ تھا، تو نماز جنازہ بھی تو استغفار ہی ہے. ایسا شخص آپ کی رحمت کا، آپ کی دعاؤں کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، اگر میری دعا سے اللہ اس کو عذاب سے بچاتا ہے تو میرے لیے اس سے خوشی کی بات کیا. آپ نے حضرت عمر کی باتیں سنی، مسکراتے رہے، کہا کوئی بات نہیں، 70 سے زائد بھی کہوں گا. اور جنازے سے منع تو نہیں کیا، کیونکہ یہ آیت پھر اس کے بعد نازل ہوئی تھی. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، आपके कुर्ते में दफन किया गया, खुद आप उसकी कब्र में उतरे, यहाँ तक आता है कि उसको आपने अपना लुआब भी लगाया, लेकिन ये सब कुछ उस शख्स के काम ना आया। क्यों? इसलिए कि दिल में कुफर और ईमान मिला हुआ था, मुनाफ़त थी, फासिक तहत चिकन था, दावा इस्लाम का था, रसूम इस्लाम के थे, लेकिन दिल ईमान से खाली और अहदे वफा से कोसों दूर था। तो पता क्या चला कि आप पर मैं जमजम के पानी में भीगा हुआ कफन डाल दें, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखी हुई चादरों में दफना दें, हम कब्रिस्तान के ऊपर फूल पत्तियां लगा दें, असल बात अंदर के अमल है। और वजह भी मुनाफिकीन से तरके ताल्लुक की यही थी कि ये लोग काबिल भरोसा नहीं है। मसलियत परस्त शख्स कभी इस्लाम दोस्त नहीं हुआ, वो जहाँ अपना फ़ायदा देखेगा, जिस दिन उसका दिल चाहेगा अपने लिए समझेगा, वो इस्लाम को भी फ़ायदा दे देगा और उसके बाद फिर उसका नहीं पता होगा। तो यहाँ ये हुक्म देना असल में बाद वाले मुसलमानों के लिए भी एक लाह अमल था। और वो क्या है कि आज दुनिया में मुसलमानों को पता लग जाए कि जो ज़िंदगी भर इस्लाम से मुखलिस ना हो तो फिर उसके मरने के बाद इस्लाम उससे फ़ायदा नहीं देगा। और इसीलिए फिर बाद वाले जो आइमा किराम गुजरे, वो भी ऐसे ख़ास लोग जिनका फिस्क और फजूर आम था, उनका नमाज नज़र नहीं पढ़ाया करते थे। बाज़ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके बाद फिर केयरफुल हो गए। किसी का जनाजा लाया जाता तो आप उस शख्स के बारे में पूछते, अगर पता चलता कि बुरे किरदार का शख्स था तो फिर नमाज़ नहीं पढ़ाते थे और कहते थे घर वालों को कि तुम खुद पढ़ लो। फिर आप देखिए, सवाल पैदा होता है कि आपने कफन में लगाने के लिए कमीज़ क्यों दी, जबकि उसका निफाक तो खुला हुआ था। तो पहली वजह यह कि आपको यकीन था कि मेरी कमीज़ से भी उसको फ़ायदा नहीं होगा, चलो मैं ये काम कर देता हूँ। दूसरी बात, उनके बेटे अब्दुल्ला की दिलजोई के लिए मुसलमान थे। तीसरी बात ये थी कि कलमा तो पढ़ा ही था ना उसने, तो उसके उस कलमे की इज़्ज़त के लिए। फिर एक और बात क्या थी कि आपके हुस्न सलूक को देखकर बाकी लोगों के दिल में अगर नरमी आ जाए। लेकिन एक और वजह भी बड़ी मारूफ है कि जंगे बदर में हज़रत अब्बास जो तवीलुल कामित थे, उनको अब्दुल्ला बिन उबई का कुर्ता मिला था, तो अल्लाह के नबी ने उस एहसान को उतारने के लिए अपना कुर्ता दे दिया और अल्लाह ताला ने आपको, यानी कह लीजिए कि जेरे बार नहीं रखा किसी का भी। मेरे आपके लिए इसमें बहुत ख़तरे की बात है। हम बाज़ दफ़ा दुआएं मांगते हैं, हमें काबे में मौत आए, हम मदीने में मरे, अच्छी बात है, मांगनी चाहिए, अच्छी मौत आती है, लेकिन किसको, जिसकी ज़िंदगी अच्छी हो। हदीस में आता है, तुम जैसा जियोगे वैसी मौत आएगी, और जिस हाल पे तुम मरोगे उसी हाल पे तुम जियोगे। और ये जो बात है नमाज जनाजा, यही असल में देखिए इस्तग़फ़ार है। मरते वक्त जब हम किसी की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं तो अल्लाह से हम सिफारिश कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इसको बख्श दे, और कल क़्यामत के दिन फिर यही चीज़ शिफात बनेगी। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में मुनाफिक को नबी सल्लम का नमाज जनाजा पढ़ाना फ़ायदा नहीं दे रहा, तो कल क़्यामत के दिन अगर बिलफर्ज आप उसकी सिफारिश कर भी दें तो उसके साथ क्या होगा, ये अल्लाह जानता है और अल्लाह को पता है। लेकिन आपके मेरे लिए ख़तरे की बात है। अपने आप को हमेशा इस नज़र से देखिए कि मेरे साथ क्या मामला होगा, और अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करनी है। फिर इसके बाद निफाक से मुतल्लिकात कुछ जनरल बातें, जिसमें एक चीज़ माल और औलाद की मोहब्बत और कसरत पैमान है। आयत 85, वला तो जिब का अमवाल हूँ व औलाद हूँ, और आपको ना पसंद आए ना भाएँ इनके माल और ना इनकी औलाद। यानी कुफर और निफाक की मौजूदगी में लोगों के माल और उनकी औलाद और औलादों की तरक्कियाँ और उनकी पढ़ाइयाँ और उनके स्टेटस से आप मुतासिर ना हों, वक्त ना दें इनको। ये आयत इसी सूरत में 55 नंबर पर आई थी, थोड़े से फ़र्क के साथ, वहाँ मफहूम यही था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात इसमें बढ़ गई। और वो क्या, इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद्दुनिया, अल्लाह तो यही चाहता है कि इन्हें अजाब दें इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से दुनिया में। वतस्खा का अनफुसुहुम, और इनकी जानें निकलें, वहुम काफिरून, और इसी कुफर की हालत में हों। यह भी एक इंतकाम की हद है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि अब ये बुरे बने थे, अब ये पूरे बन जाएं। तो क्या पता चला कि दुनिया की चीज़ों को देखकर लोगों की आप अपनी आंखें लंबी ना करें, इसलिए कि अमूमन हमारी भी आंखें चौड़ी हो जाती हैं लोगों की, दुनिया की चीज़ें, उनके घर गाड़ियाँ देखकर। एक बात पे दिल जमा लीजिए, अगर किसी की अल्लाह की निगाहों में कोई वक्त नहीं तो वो सोने चांदी की में खेल भी रहे, उसके बारह बारह बेटे भी हैं, कसरत औलाद भी है, तो भी फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ नबी सल्लम के साथ साथ आम मुसलमानों को भी यही पैगाम दिया जा रहा है कि लोगों की कसरत औलाद और माल को तुम कामयाबी की दलील समझते हो, फिर तुम भी उसी तरफ चल पड़ते हो, तो याद रखो कि ये अल्लाह के हाँ किसी के कामयाब होने की दलील नहीं, ये तो आजमाइशें हैं। और जब बंदा दुनिया तलब करने में जाता है तो आखिरत को भूल जाता है, तो बेहतर है कि दुनिया में से निकलने से पहले पहले अपने मामले को दुरुस्त कर लिया जाए। अमूमन हम किस चीज़ को देखकर खुश होते हैं? अमूमन इल्ला माशाल्लाह हम किसकी बातें करते हैं? उनका घर देखा है, गाड़ी देखी है, पांच बेटे इतने अच्छे, कितना पढ़ा, और एक दुनिया की तालीम जो आज कब होता है, किधर से पढ़े, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, क्या हुआ, क्या है, सब मिट्टी की चीज़ें हैं। लेकिन लोगों की आंखें चौड़ी होती हैं और अपने बच्चों के तालीम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने को बस लोग कामयाबी और दलील समझते हैं। किसी ने मुझे अभी ये दो तीन दिन पहले एक दर्स में थी तो इतनी तकलीफ़ ने खबर सुनाई कि किसी की बच्ची है, मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल आखिरी साल में थी, पाँचवा साल था गालिबन जो भी होता है जिस मुल्क का भी, और एक्सीडेंट हुआ कहीं, और उस दिन से लेकर आज तक वो कोमे में है। 5-6 माह हो गए, आपकी बेटी की दोस्त है। तो मैंने सोचा उसने 5-6 साल मेडिकल किया है और अब फल काटने का वक्त आया तो वो कोमे में चली गई, अल्लाह उसको वापस निकाल दे उस मर्ज से। क्या वो 6 साल की पढ़ाई से फ़ायदा लिया? और अल्लाह ना करे अगर जाने का वक्त आ गया तो पता नहीं आगे की तैयारियां हैं कि नहीं है। हमेशा उस चीज़ की फ़िक्र कीजिए जो आपके साथ जानी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान के तीन दोस्त हैं, एक रुख कब्ज होने तक साथ रहता है, दूसरा दोस्त माल है कब्र तक साथ जाता है, तीसरा महशर तक साथ जाता है। रूह कब्ज़ होने तक साथ देने वाला दोस्त माल है, कब्र तक साथ देने वाला दोस्त उसके घर वाले हैं, और हशर तक साथ देने वाला दोस्त उसका अमल है। ये तबरानी की रिवायत है। आप देखिए जो अमल है ना, ये हमारे इल्म का आईना है। आप अपने अमल के आईने में देखिए कि आप किधर खड़े हैं। और साथ ही ये जो बात कही बतज़हक अन्फुसुहुम वहुम काफिरून, तो अक्सर की यही हालत नहीं, मौत आ जाती है लेकिन अभी तक दुनिया की कहानी पूरी नहीं हुई होती। अल्लाह ताला सबको बुरे अंजाम से बचाए। फिर अगली आयात में दोबारा मुनाफिकीन की ही कुछ बातें और साथ सच्चे मोमिनों का किस्सा। आयत 86, व इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अनामिनु बिल्लाहि व जाहिदु मा रसूलिहि, और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि ईमान लाओ अल्लाह पर और जिहाद करो इसके रसूल के साथ, यदि इस्लाम में मौके आते ही रहेंगे मेहनत के, जिहाद के, कोशिशों के, जिद्दोजहद के, माल लगाने के, जान लगाने के, खाने पकाने के, ये नहीं कोई कह सकता कि बस अब ख़त्म। तो अब होता क्या जब ऐसा कोई मौका आता है नेकी का? इस्ताज़नक उलुत्तौली मिन्हुम, आपसे रुख्सत वही मांगते हैं जो कुदरत रखते हैं। देख लीजिए उलुत्तौल, तौल दौलत वाले को कहते हैं, दौलत कुदरत, यानी जो बेचारे हैंड टू माउथ होते हैं थोड़े असबाब वाले, वो कुछ ना कुछ जको तक्का करके ले ही आते हैं, कुछ कर ही देते हैं, कुछ वक्त लगाते हैं, लेकिन जिनके पास असबाब हैं, गाड़ियां हैं, रिसोर्सेज हैं, घरों में काम करने वाले हैं, घरों के हालात अच्छे हैं, शौहर भी कोऑपरेटिव हैं, बच्चे भी कुछ नहीं कहते, वही रुख्सत मांगते हैं। कहते कि वो कालू जरना नकुम अलकायदीन, और कहते हैं हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठ रहने वालों में शामिल हो जाए। देख लें रुख्सतें तलब करने वाले अमूमन मजबूर नहीं होते, बस दिल की तंगी का कोई मामला ऐसा होता है कि उनको लगता नहीं है कि इस वक्त हम ये नेकी का मौका छोड़कर कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। वजह क्या है ऐसा कहने की? आयत 87, रदू भी आई यकून उमल खबालिफ, वो इस पर राजी हो गए कि पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो जाए। इस अंदाज में तंज है। देखिए जंग करना मर्दों का काम है जबकि ख़वातीन और बच्चे ऐसे मौक़े पर घरों में पीछे रह जाते हैं। तो ग़ज़वे तबूक का नाम लेकर यहाँ मर्दों को बताया गया कि औरतों की तरह घर में मत रहो। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, क्या तुमने औरतों की तरह चूड़ियाँ पहन ली हैं? औरत के लिए घर में रहना शान है, मर्द का घर में रहना ऐब है। मर्द के लिए अल्लाह ताला ने जो दायरा कार रखा है वो बाहर का है। तो यहाँ औरत की बुराई नहीं की, ये बात कहते हैं देखो डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो ख़वालिफ़ का लफ्ज़ है ना, तो घर में रहने वाली औरत को ख़वालिफ़ कहते हैं, खालिफा। क्योंकि औरतें जो है वो अमूमन घर में ही रहती हैं, लोग कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो औरत ने अमूमन अपने घर में रहकर घरदारी करनी होती है, बच्चों को देखना होता है, सामान घर का देखना होता है, तो मर्द घर रहकर क्या करेगा? इसी की तरफ इशारा है कि ये सिर्फ इनके हीले और बहाने हैं, इनका है ही दिल नहीं। आज अगर गिने ना पूरे सबक में लफ्ज़ कायदीन, कायदून और मकद कितनी दफ़ा आ रहा है, पीछे रहना, पीछे रहना और बैठ रहना, ये नापसंदीदगी है। दीन को ज़रूरत हो आपकी और आप कुछ नहीं कर रहे, बस घर में बैठ रहे हैं, आपका जुर्म है। अक्सर लोग कहते हैं कुछ नहीं कर रहे, बस घर में ही होते हैं। मैं सोचती हूँ ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसे या वो कहते हैं मैं तो कभी घर बैठ ही नहीं सकती, मेरे लिए तो मौत होगी अगर मैं घर बैठूं, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी घर नहीं बैठी। लेकिन आप देखिए जब बंदा बैठता है तो फिर उसको बैठना और अच्छा लगता है। तो असल में ये जो बात इधर है ना, ख़वालिफ, इसको आप ज़रा सा समझिए। ये वो लोग हैं जो दिल के अंदर उनके चीज़ होती है ना, उनके अमल से दिखती है। रज़ा और पसंदीदगी दिल का फेल है। ज़बान से जितने मर्जी इंसान बहाने तराश ले, लेकिन जब तक दिल में अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने की रज़ा नहीं होगी ना, खुशी नहीं होगी, वो काम नहीं कर सकते। और आप देखिए कि ऐसे मौके जबकि मर्दों के साथ औरतों का भी कई मौके पे निकलना लाजमी हो गया, ये नहीं निकलते तो फिर ये इनकी बुजदिली है। असल में ये इनकी बेगैरती और बुजदिली का तान है। अरब लोग तो ये ताना पसंद ही नहीं कर सकते थे कि तुम औरतों की तरह घर बैठो। तो ये मुनाफिक इनकी गैरत को झंझोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, चेहरा नुमाई की जा रही है उनकी, और असल में दिखाया जा रहा है कि अब तुमसे इन किसी ऐसे काम की तवक्को न रखो कि जिसमें जुर्रत चाहिए, जिसमें मजबूती चाहिए, जिसमें जान देनी पड़ जाए। ये बुज़दिल हैं, इनकी आदत बन गई है, इनके दिलों पे अल्लाह ने ठप्पे लगा दिए हैं, कबूलियत की ताकत से महरूम कर दिए इनको। अब ये समझने समझाने की हद से ऊपर निकल गए हैं, और असल में अल्लाह ने इनको किस्मत बदलने और ईमान को बढ़ाने के बड़े मौके दिए थे, लेकिन इन्होंने पस्ती में उतरना पसंद किया। अल्लाह इन पर अपनी रहमत काबर बरसाना चाहता था, बरसाया भी था, लेकिन अब इनके ईमान की खेती बंजर से बंजर ही होती जा रही है। ऐसे बदनसीब लोग, अगर अल्लाह के आखिरी रसूल की उम्मत और काफिला हक के साथ रहने से पीछे भी रह गए तो फिर इनको रहने दो। तो फिर कौन लोग हैं जो नबी का साथ देते हैं? ये है अगली आयत में अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बात करते हैं, लाकिन रसूल वल्लज़ीन माहू, लेकिन इसके बरक्स। अब छोड़ो इन किस्सों को, कड़वी हो गई बात, दिल खट्टे हो गए, तू भी अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून, दिलों पे मोहर लग गई, समझ नहीं सक रहे। इनको छोड़ो, अब अच्छे अच्छे लोगों की बातें करो। कौन? जो रसूल के साथ हैं, करते के जाहदु बि अमवालिहिम, जो अपने मालों के साथ जिहाद करते हैं, हर जगह जहाँ माल लगता है वो लगाते हैं, और वानफुसिहिम, अपनी जानों से भी, जान भी लगाते, वक्त भी लगाते, सेहत भी लगाते, मेहनत भी करते, पसीना भी बहाते, और नफ्स के अंदर फिर अना भी छोड़ते, तकल्लुफात भी छोड़ते, अच्छे बुरे का फ़र्क भी छोड़ते, यानी हर वो चीज़ जिसमें ये नफ्स या दिल या दिमाग कुछ ना कुछ आता है आगे, वो सब छोड़ते हैं। वउलाइक लहुमुल खैरात, और यही वो लोग हैं जिनके लिए भलाइयाँ। देखिए खैरात, एक होती खैरात उर्दू में, इसको खैरात दे दो, कितना बुरा समझते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? ये हैं जान माल लगाने वाले, खैरात पाने वाले, और खैर खैरातुन की जमा खैरात। वउलाइक हुमुल मुफ्लिहून, ये फलाह पाने वाले। ये जो लफ्ज़ फलाह एक लफ्ज़ नहीं है, एक जामे इस्तिलाह, हम सूरत मोमिनून के शुरू में इसको पढ़ेंगे। और के इनको मिलना है, अदल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नदियाँ बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। यही है बड़ी कामयाबी। ज़रा उंगलियों पे गिने, क्या किया आपने? जाहदु बि अमवालिहिम अनफुसिहिम, जान लगाई और मन लगाया, जिस तरह जिस फॉर्म में लगा, जगह दी तो, वक्त दिया तो, माल दिया तो, जेवर दिया तो, दो काम किए ना, गिनिए क्या मिला। नंबर एक खैरात, सारी भलाइयों का सरचश्मा उनको मिल गया, और वल्लाही ये भलाई को आखरत में नहीं मिलती, ये दुनिया में मिलने लगती है। ज़िंदगी में भलाइयों के साथ इंसान की ऐसी दोस्ती हो जाती है कि एक नेकी के बाद दूसरी नेकी के रास्ते खुलते हैं। खैरात से ये भी पता चलता है कि अल्लाह उनके लिए खैर के और रास्ते खोल देता है। एक काम आपने अच्छा किया, अब दूसरा भी आप करें, तीसरी में भी आपकी ही ये बारी है। आप में से किसी को अगर एक काम बार बार मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शायद मैंने अच्छा किया होगा तभी अल्लाह ने मौका दिया, और एक काम आपको देकर अगली दफ़ा आपसे छीन लिया जाए तो ये सोचने का मुकाम है। दूसरी बात मुफ्लिहून, इस पर हम सूरत मोमिनून में डिटेल्स पढ़ेंगे। तीसरी बात अद्दल्लाहु लहुम जन्नात, देखिए ये भी तो कहा जा सकता था ना उनको बागात मिलेंगे जिसमें नहरें हैं, नहीं अद्दल्ला अल्लाह ने तैयार किया। आपको क्या पता कि आप अल्लाह के रस्तों में जान माल लगा रहे होते हैं तो उस वक्त अल्लाह क्या तैयारियां कर रहा होता है, सजा रहा होता है आपकी जन्नतों को जिनके नीचे नहरें हैं। फिर अगली बात खालिदीना फीहा, ये 2-4-10 दिन का पैकेज नहीं है, हमेशगी, और ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ऊपर मुफ्लिहून जहाँ फ़ाइज़ून, मुफ्लिहून अल फौजुल अज़ीम, और क्या चाहिए? क्या इस खोटे जिस्म की इससे बढ़ के कीमत कोई दे सकता था? इस नकारा इंसान को इससे बड़ा कोई काम दे सकता था? इससे कोई बड़ी जॉब मिल सकती थी किसी को, मुझ में से, आप में से? इससे ज़्यादा पे कोई दे सकता था मुझे और आपको? इससे ज़्यादा कोई बड़ी कदरदानी कर सकता था आपकी मेरी? जो एक मालिक दुनिया में करता है और फिर आखिरत में जो करना है वो, और कितने लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सुस्ती और काहली की वजह से इन एजाजात से पीछे हो जाते हैं। पता लगेगा जिस दिन आपके साथी ऊपर मुकर्रबीन में पहुंच गए और आप असहाबुल यमीन में बैठे हुए उनको देख रहे हैं, वहाँ तो शायद हसरत ना हो लेकिन आज हसरत की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला रग़बत दिलाते हैं कि अभी ज़िंदा हो, अभी फ़िक्र करो, ज़िंदगी से मोहब्बत रखने वालों, माल से मोहब्बत रखने वालों, आराम से मोहब्बत रखने वालों, कमज़ोरी और ज़िल्लत का मिजाज रखने वालों, अभी उठ जाओ, अभी वक्त है, अभी मोहरें नहीं लगी, वरना तू भी आला क़ुलूबिहिम, उठो, अल्लाह का रसूल तो आज नहीं, उसका मिशन तो है। आज की तबूक देखो, गली गली तबूक है, पूरी दुनिया पे इस्लाम के ख़िलाफ़ महाज है। आज भी जान और माल लगाओ, फिर देखो अल्लाह तुम्हें क्या देता है। मेरा दिल करता है पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा ऐसे लहराता हुआ इंसान देखे कि दिल खुश हो जाए कि वाकई ही लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, कोई फ़र्क नहीं लगता मशरिक से मगरिब और ईस्ट से वेस्ट में, क्यों कि दुनिया अल्लाह की है और मैं और आप उसमें रहें, और ये इतना बड़ा काम है आप इसका भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है 2811 नंबर की, जिस बंदे के भी कदम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हो गए, इन्हें जहन्नुम की आग छुए ये नामुमकिन है। तो इल्म के रास्ते, दीन की खिदमत के रास्ते, इन रास्तों पे आते हुए अपने कदमों पे मान किया करें। अनस बिन मालिक से रिवायत, आपने फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो जन्नत में दाखिल होने के बाद दोबारा दुनिया में आना पसंद करे, ख्वाहिशें सारी दुनिया मिल जाए सिवाय शहीद के। इसकी ये तमन्ना होगी कि दुनिया में वापस जाकर 10 मरतबा और अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो, क्योंकि शहादत की इज्जत वहाँ वो देखता है। बुखारी की रिवायत 2817। तो नबी के साथ निकलने वाले और साथी कौन थे, कैसे थे, अपना तकाबुल कीजिए। पहली बात है कि वो ईमान के तकाजे पूरी करने वाले थे। खुद से पूछिए, क्या मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा पूरा करती हूँ? दूसरी बात, अपनी जानों और मालों के साथ जिहाद करते थे। पूछिए, क्या मेरी जान और माल अल्लाह के रस्तों में लग रही है जितनी लगनी चाहिए? फिर उनको खैरात मिलेगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना की दुआएं करते हैं, खैरात कब मिलेगी? जब अल्लाह के रस्तों में इंसान भाग दौड़ करता है, और ऐसे लोगों को फिर क्या जन्नत, वो जन्नत है जिसके नीचे में नहरें बहती। अबू हुरैरा की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, मैंने अपने साले बंदों के लिए ऐसी जन्नतें तैयार की जिनको ना तो किसी आँख ने देखा, ना कान ने सुना, ना दिल में ख्याल आया, और ये नेमतें इनके लिए जमा कर रखी हैं, बल्कि इनका जिक्र छोड़ दो जिन नेमतों की अल्लाह तुम्हें इत्तला दे चुका है, ये वो नेमतें। और जाके पढ़ लो कि फ़ला तआलमु नफ्सु मा उख्फिया लहु मिन कुर्रति आयुन, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। तो ये चंद दिन हैं ज़िंदगी के जिसमें जो करना कर ले। अबू हुरैरा से रिवायत है कि अबुल कासिम ने फरमाया, कौन थे वो? अल्लाह के नबी, जन्नत में जो सबसे पहला गिरोह दाखिल होगा, इनकी सूरतें 14वीं रात के चांद की तरह होंगी। जो गिरोह इसके बाद जन्नत में दाखिल होगा, इनकी सूरतें चमकते हुए सितारों की तरह रोशन होंगी, और इनमें हर एक जन्नती के लिए 2 बीवियाँ होंगी, जिनकी पिंडलियों का मगज़ यानी गूदा गोश्त के पीछे से चमकेगा, और जन्नत में कोई आदमी भी बीवी के बगैर नहीं होगा। मुस्लिम की रिवायत है। اور ابو حریرہ سے روایت اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہ جنت میں نہ تھوکیں گے نہ ناک صاف کریں گے نہ ہی پاخانہ ہوگا، ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود خوشبودار لکڑی سلگ رہی ہوگی، ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ان جنتیوں میں ہر ایک کے لیے دو بیویاں جن کی پنڈلیوں کا مغز خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا، نہ ہی آپس میں بغض رکھیں گے، ان کے دل ایک طرح کے ہوں گے، صبح و شام اس کی پاکی بیان کریں گے۔ مسلم کی روایت 71-51۔ تو بات یہ ہے کہ انہیں روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ مومن کا سب سے بڑا اور آخری گھر جنت ہے، اس کی تلاش میں آپ اور میں روز صبح نکلتے ہیں، ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک کسی کی کوشش کریں لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا۔ اور اب آخری دعائیں جس میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کی کہانیاں کھول دیتا ہے کہ جو واقعی نیکی کے موقعوں پہ پیچھے رہتے ہیں۔ وَجَعَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْآرَابِ لِيُوذَنَ لَهُمْ، اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بددو بھی کہ ان کو رخصت دی جائے۔ یا نوٹ کیجئے، یہ وہ حصہ جو اب تبوک سے واپس آنے کے بعد کے حالات پہ ہے، آگے 11واں پارہ بھی اسی سے شروع ہوگا۔ اور آراب، عربی کی جمع، بددو دیہاتی، بادیہ نشین، جنگلوں میں رہنے والا۔ جہاد کے لیے عام اعلان ہوا، مدینہ کے چاروں طرف کے لوگوں کو بھی یہی حکم تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نکلے، لیکن بہانے بنانے والے، اس مہم پر جانے سے پیچھے رہنے والے، وقاد الذین کذب اللہ ورسولہ، پھر دیکھیے لفظ بیٹھنے کا آگے، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے، انہوں نے جو وعدے کیے وہ جھوٹے، جو عذر بیان کیے وہ جھوٹے، بے بنیاد۔ اس لیے فرمایا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا ان کو جو اس کفر میں پڑے رہے۔ یعنی ہر جگہ عذر والے دو ہی قسم کے لوگ تھے۔ اب یہ آیتیں پڑھ کے تو صحابہ پریشان، تو اللہ نے اگلی آیتوں میں تسلی دی۔ 91، لئی سال دعفا، ضعیفوں پہ کوئی الزام نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی حرج نہیں، ولا علی المرضا، نہ مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ یعنی آخر اتنا طویل سفر تھا تو ضروری تھا کہ آدمی تندرست ہو، توانا ہو، سواری بھی ہو، راستے میں ضروریات بھی ہوں۔ اب کوئی ضعیف ہے، بیمار ہے، نادار ہے، تو سفر کے اخراجات بھی نہیں، تو واقعی اللہ کی نظر میں وہ مجبور ہے، تو کیسے لوگوں کی کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی الزام نہیں۔ شرط ایک ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، شرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص ہوں۔ دیکھیے عذر والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے اس عذر پہ، شکر اللہ کا بیمار ابھی ہوئے ہیں، سب کو پتہ میں بیمار ہوں، میں چھٹی پہ ہوں، اور ایک روتے ہیں، ہائے ابھی بیمار ہونا تھا، ہائے ابھی یہ مشکل آنی تھی۔ تو یہ نصحوا والی کیفیت ہوگی نا، تو عذر کے ساتھ بھی اجر ہے، لیکن خوشی ہو رہی ہے اپنے محروم ہونے پہ، تو پھر اللہ جانتا کیا ہوگا، پھر کس پہ پکڑنی، مال المحسنین من سبیل، ایسے محسنوں پر بھی کوئی الزام نہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا پتہ چلا کہ نیکیوں کے مواقع پہ پیچھے رہنے والے اگر صحیح طور پہ معذور ہیں، ان کا عذر سچا ہے اور دل میں خیر خواہی ہے، اور ساتھ ہی اگلی آیت آنکھوں میں آنسو ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ان کے عذر کا پتہ ہے۔ مجھے آپ کو ان کے بارے میں کچھ کہنے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے فرمایا ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہم، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آئے آپ کے پاس کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کریں۔ قلتا، آپ نے فرمایا، لا اجد، میں نہیں پاتا، آئی ڈونٹ ہیو، کیا، ما احملکم علیہ، جس پر میں تم کو سوار کروں، میرے پاس سواریاں ہیں نہیں۔ تولو، اور وہ پلٹتے ہیں، وعینہم تفید من الدمع خزنہ، اور ان کی آنکھوں سے غم اور رنج کے مارے آنسو نکلتے ہیں۔ کس بات کے آنسو ہیں؟ اللہ یجدو ما ینفقون، کیا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم خرچ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل جان سے چاہتے تھے اس مہم میں شریک ہوں پر وسائل کی کمی میں شرکت نہیں کر پا رہے، صدمہ ہے اپنی محرومی پہ، رنج اور غم سے ہلکان ہے، ادھر کون تھے فارغ المخلفون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، شکر ہے پاکستان میں، شکر ہے باہر ہے، شکر ہے شادی ہے، سب کو پتہ ہے ہمارے حالات اس وقت ٹھیک نہیں، اور یہ کون ہے جو رو رہے ہیں، پریشان ہیں، سچے ادھر الطول تھے، ادھر محروم لوگ ہیں، وسائل والے ادھر تھے، ادھر وسائل کی کمی والے رو رہے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور معذور سمجھے گا. تو پھر پکڑ کس کی ہے؟ انما السبیل، پکڑ یعنی سبیل، الزام تو بس ان لوگوں پہ، الذین یستاذنونک، جو آپ سے آ کے اجازتیں مانگتے ہیں، رخصتیں دیتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، کیا حالت کیا؟ وہم اغنیا، جب کہ غنی ہے، مالدار ہے، غنی سے مراد یہاں مال نہیں ہے، حالات ٹھیک ہیں، اتنے برے نہیں جتنے پیش کر رہے ہیں، اتنا مشکل نہیں، ہاں مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر کرتے تو نکل سکتے تھے، لیکن ردو بی یکون مال خوالف، شاید کوئی دسویں دفعہ یہ لفظ آیا ہے، اور یہی اس لیسن کا تھیم تھا، بیٹھ رہنے پہ خوشیاں مت مناؤ، اور اگر آج بیٹھے ہو تو بیٹھے ہی رہو، پھر اللہ دوبارہ موقع نہیں دے گا. کیا وہ راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، تانے دیے جا رہے ہیں کہ بیٹھو عورتوں کی طرح گھر میں. وَتَابَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، وجہ یہ ہے آپ کے مطلب کی بات، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ علم نہیں رکھتے تھے، صحیح علم نہیں ہوتا نا تو بندے کو اپنے نفع نقصان کا فرق ہی نہیں پتہ ہوتا، علم کے بعد ہی تو نیکیوں کے مواقع کی قدر آتی ہے. قرآن نہ پڑھتے تو آپ بیٹھے ہوتے ادھر، قرآن نہ پڑھتے تو آپ کام کرتے ادھر، قرآن نہ ہوتا تو آپ ادھر کوئی انصار اللہ میں بیٹھتے، خدمت کرتے، صفائی کرتے، بچے پالتے، کیا ملتا ہے آپ کو؟ آپ کو نیکی کا موقع ملتا ہے. تو بہرحال یہ آیتیں پڑھ کر واقعی انسان اپنے اندر جھانکنے لگتا ہے. منافقین کے بعد اب ایمان والوں کا انجام اور کردار اور جان مال، یہ کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی ڈکشنری نہیں چاہیے ہوتی، اس کے لیے ہر بندہ اپنے حالات کو دیکھے کہ میرے قدم کب لڑکھڑاتے ہیں اور کب میرے قدم جم جاتے ہیں اللہ کے رستوں میں، کیا بچا لینے کو سب سمجھتی ہوں یا لوٹا دینے کو سمجھتی ہوں، کیا میری زندگی کا مقصد اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے، کیا میں اس مقصد کے لیے جان مال دینی پڑے تو دیتی ہوں، کیا سب بچا کر کچھ دیتی ہوں یا کچھ بچا کر سب دیتی ہوں، کیا میں جیتی اس لیے ہوں کہ اور جئیں اور مرتی اس لیے ہوں کہ سب مرتے ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ زندگی سود و زیاں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے میرے فائدے اور نقصان کی چیز نہیں، بلکہ اس کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، برتر از اندیش ہے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. جس نے زندگی کا یہ رخ پا لیا اس کے لیے پھر آخرتیں، خیرات، عزتیں، دنیا آخرت کی جنتیں، اللہ کی رضا اور اس کا قرب، اور اس کے بعد باقی وہی معذرون، عذر والے، اللہ جانے وہ جانے. لیکن میرے آپ کے لیے دیکھیے ایک بات ہے، ہر موقع ہمیشہ نہیں رہتا اور وقت بھی ایک جیسا نہیں رہتا. آپ اپنے پچھلے 10 سالوں کو زندگی کے دیکھیے، کیا حالات ایک جیسے، کیا وقت ایک جیسا، ماحول ایک جیسا، حالات ایک جیسے، تو پھر اگلے وقت میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتنے ہیں ہماری زندگی میں، ہمیں نہیں پتہ آگے کیا آنے والا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا آج نیکیاں کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے اندر کی اصلاح کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھاگنے والا بنائے. ایک ہوتا ہے نیکی سے بھاگنے والے، ایک ہوتا ہے نیکی کی طرف بھاگنے والے. تو اللہ ہمیں نیکی کی طرف بھاگنے والے بنائے. اور جو لفظ ہے نا معذرون، یہ معذر کی جمع ہے. معذر کہتے ہیں جھوٹے موٹے عذر پیش کرنے والے کو. اسی طرح ایک معتذر بھی ہوتا ہے، ہوتے گول مول باتیں، کبھی عذر سچا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے. اور کچھ لوگ صرف بہانے کر کے حق اور باطل کے مارکے سے پیچھے ہوتے ہیں، اور کچھ تو تکلف بھی نہیں سمجھتے نہ کہنے کا، ان کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ کیوں نہیں اس کام پہ. تو اللہ تعالیٰ بہترین جج ہے، وہ ہر ایک کو چھان پھٹک کے سامنے رکھتا ہے. یہی تھے وہ گروہ جو صحابہ کرام کے تھے. کل آپ بھی کے ساتھیوں میں سے آن لائن سے کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا کہ جب آپ نے ہمیں سورۃ توبہ پڑھائی تھی تو آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ صحابہ تاریخ ساز تھے اور ہم خود ساز ہیں. اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ دوبارہ آپ سنتے ہوئے واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خود سازی ہے ہماری جو ہمیں کسی کا نہیں چھوڑ رہی. دعا کیجیے ہم اللہ کے دین ساز بن جائیں، اپنے ہر فائدے کو پیچھے اور اللہ کے دین کے فائدے کو آگے کریں، اور جتنا آپ آگے کریں گے یقین کریں اللہ آپ کو اور فائدے دیتا جائے گا. तो ये थी आज की सूरत का हिस्सा, और माशाल्लाह भी पारा भी पूरा सबक पूरा। आज कहाँ कहाँ इस्लाम के लिए वॉलंटियर्स की ज़रूरत नहीं है आप देखिए। और मैं ये सोच रही थी कि वो सवारियाँ ना होने के बावजूद तड़प तड़प के आते थे, और कैसे जाएं पैदल, अब यहाँ से अमेरिका को पैदल तो नहीं जा सकता ना, तो क्या दिल पे चोट पड़ी होगी उस वक़्त। और ऐसा उज़र वाला कि जिसके पास असबाब ना हो वो तो घर रह कर भी नेक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ लोग हैं तुम्हारे साथ हैं, कोई घाटी तुमने नहीं पार की वो उसमें है, जो तीर तुम उठाते हो वो भी उठाते, क्यों? उज़र ने उनको रोक दिया। तो अपने उज़रों की फ़िक्र करें, और थोड़ी थोड़ी बातों पे। और जो देखिए आम ज़िंदगी में, अब आप बच्चों को पालते हैं, क्या आप अपने बच्चों को इतने ढीले ढाले पाल रहे हैं कि हर मौके पे वो बीमार? उनको तो नज़ला हो गया तो वो उनके लिए तो बहुत बड़ा उज़र है, चलना पड़ गया तो उज़र है क्योंकि चलने की आदत नहीं रही, ब्रेड टोस्ट अंडा ना मिला तो उनके लिए परेशानी है। तो ये एक लाइफ स्टाइल है, बचपन से माएँ अपने बच्चों को इस तरह से पालें कि ये अल्लाह के नबी की उम्मत के सिपाही भी बन सकें। और ये सारा कुछ जब इल्म के रास्ते की सोबतों की सूरत में हम बर्दाश्त करते हैं ना, तो अल्लाह के हुक्म से फिर बाद में दूसरी तरफ भी हो जाता है। और ये जो उज़र वाले लोग थे, इनमें कुछ लोगों की नाम भी आते हैं, अमर बिन जमूह थे, लंगड़े थे, अब्दुल्ला बिन उमय मकतूम नबीना थे, फिर भी देखिए हर मौके पे वो मौजूद होते थे। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में रखे कि मतलब उज़र अगर है भी तो उसको पीछे डाल के अल्लाह के रास्तों में भागने वाले बन जाते हैं। एक और चीज़ मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मुझे खुद फील हो रही है कि नबी सल्लम के दौर के जो मुनाफिकीन थे, कम अज़ कम उनको ये एहसास था कि वो आके अल्लाह के नबी के सामने झूठा ही उज़र पेश कर दें। आज तो हम में से बहुत सारे मुसलमान हैं वो ये फील ही नहीं करते कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। करते हैं फील सब, नमाज पढ़ना हो सकता है करते हो, लेकिन दीन इस्लाम के लिए तड़पना कुछ करना, इसको तो वही समझते हैं जो समझते हैं, वो कहते हैं ये एक्स्ट्रा काम है कुछ लोगों के करने का। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ल इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون